نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین توفاہم الملائکت ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم. جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں, کیا ظلم تھا ان کا؟ کہ فتنوں کے دور میں فتنوں میں پڑے رہے, اور جس جگہ پہ اسلام پہ عمل کرنے میں پابندیاں تھیں, رکاوٹیں تھیں, وہاں صرف ذاتی فائدوں کی خاطر بیٹھے رہے. ایسے لوگوں کی موت کا جب وقت آئے گا تو فرشتہ موت ان سے کیا بات کرتا ہے اور ان کے ساتھ ہیلپر کیا کہیں گے؟ ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا, تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے. فرشتوں نے کہا, کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ہاں, جو عورتیں, مرد اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی ذریعہ نہیں پاتے, بعید نہیں کہ اللہ ان کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں ہجرت سے کیوں ڈرتے ہو, جبکہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور گزر بسر کے لیے بہت بڑی گنجائش پائے گا, اور جب اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کر کے نکلے پھر راستے ہی میں سے موت آ جائے, اس کا اجر اللہ کے ذمہ واقع ہو گیا, اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے. بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے امت وسط کے لیے, اور خاص طور پہ وہ مسلمان جو ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں. بعض دفعہ اس گلٹ کا شکار رہتے ہیں کہ ہم کیا کریں. بعض دفعہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سب یہاں سے ہجرت کر جائیں. بعض لوگ ان کو فتوے دیتے ہیں کہ آپ دار الکفر میں رہتے ہیں, آپ کی تو نمازیں قبول نہیں, دس اینڈ دیٹ. تو یاد رکھیے کہ یہاں میں اس کی ڈیٹیلز تو نہیں دے سکتی, لینا چاہیں تو ان آیتوں کی تفسیر سن لیجئے, وہاں ہم نے اس کو لیا. لیکن اگر میں جہاں اس ایشو کو ٹچ کیے بغیر چلی جاؤں تو یہ آپ سب کے ساتھ زیادتی ہوگی جو ویسٹ میں رہتے ہیں. تو پہلی بات دیکھیے کہ ساری زمین اللہ کی ہے, پوری زمین کا حق ہے کہ یہاں اللہ کا نام چلے. جیسے دنیا کے ہر ملک میں اس کا جھنڈا لگتا ہے نا, پاکستان میں پاکستان کا جھنڈا, انڈیا میں انڈیا کا, امریکہ میں امریکہ کا. اب آپ امیجن کیجئے کہ ایک چھوٹے سے ٹکڑے پہ جب اس ملک کا جھنڈا ہے تو یہ پوری زمین کس کی ہے؟ للہ ما فی السماوات, اللہ کی ہے. تو اصولن اور عقلن پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ کی حکومت ہونی چاہیے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 دفعہ اللہ کے نبی کے مقصد آمد کے ساتھ کہا, لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. آپ نے اپنے نبی کو اس لیے بھیجا کہ ان کے ذریعے سے اللہ کا دین پوری دنیا پہ غالب آ جائے. جہاں وہ آیتیں آئیں گی, پہلی دفعہ بھی سورۃ توبہ میں آئے گی, پھر سورۃ فتح میں آئے گی, پھر اسی طرح سے سورۃ صف میں آئے گی. تو مزاج سمجھ لیجئے کہ چونکہ دنیا اللہ نے بنائی تو اللہ کا حق ہے کہ اس دنیا پہ اس کے قانون چلے. تو گویا کہ آج جہاں دنیا میں اللہ کا قانون چل رہا ہے اصل وہ جگہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا. اللہ تعالیٰ کیا چاہتے؟ پوری دنیا پہ ایسا ہو. اب آپ دیکھیے اس کو ترتیب کے اعتبار سے دیکھیے تو اللہ کا یہ فیصلہ کیسے پورا ہوا. دین اسلام کا آغاز مکہ اور مدینہ سے ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے, بہت کوشش کی, 13 سال کی جتنی چوٹیں کھائیں اور مارے کھائیں وہ اسی لیے یوز کرا ہوا دین کلی ہی تھا. اگر اللہ کے نبی عرب کلچر سے سیمیلیٹ کر جاتے اور انہی کے رنگ رنگ میں رہتے اور ہماری طرح یہ جملہ بولتے, جیسا دیس ویسا بیس, کیا کرو, بی پیشنٹ, جو بھی ہے کرتے رہو, خوش رہو بس, تو پھر تو کوئی لڑائی جھگڑا ہی نہ ہوتا. لیکن آپ جانتے ہیں جتنی پرسیکویشن تھی, جتنے ان کے مطالبے تھے, ان میں سے کوئی ایسا نہیں مانا گیا, حتیٰ کہ آخر میں یہ کہہ دیا, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. کیونکہ اسلام بہت کلیئر ہے, اسلامک لائف سٹائل از ویری کلین اینڈ کلیئر. اس میں کوئی ہینکی پینکی نہیں ہے, کوئی ادھر سے نہیں ہے, ایبسنٹ بٹس نہیں ہے. مکہ سے نکلے جب دیکھا کہ یہاں ممکن نہیں تو یہاں سے رسم ڈلی تھی اس کی کہ اب ہجرت کرو. کیونکہ یہ دونوں تینوں آیتیں بیسٹ ہیں اس موضوع کو سمجھنے کی کہ مکہ میں جب تک رہ سکے رہے, سٹرگل کیا. یہی آج مجھے اور آپ کو دنیا کے غیر مسلم ملکوں میں رہتے ہوئے کرنا ہے. جب تک آپ وہاں رہیں گے وہاں آپ رہیے, اللہ کا نام پھیلائیے. جب مسلمان یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف پہ عمل کرتے ہیں, ینہون عن المنکر پہ عمل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اتنی دیر لگاتے ہی نہیں ہے. یہ تو ہم نے دیر لگائی ہوئی ہے, میں نام نہیں لے سکتی, لیکن آپ خود اپنے آپ سے پوچھئے, پوری دنیا کے جتنے بڑے بڑے ملک ہیں وہاں اگر ابھی تک اسلام نہیں آیا تو اس کی وجہ وہ لوگ نہیں ہیں, اس کی وجہ میں اور آپ ہیں. हमने वहां तक मैसेज नहीं कन्वे किया। फिर मक्का से हिजरत कब की? जब जान के लाले थे। यही आज मुझे और आपको हुक्म है, उम्मत वसत दुनिया के जिस मुल्क में रहे पूरे शौर से रहे। सहाबे कराम मक्का से मदीना गए, मदीना में 10 साल में हकीकत में एक आइडियल स्टेट दिखा दी गई कि इस्लामिक लॉज कैसे होते हैं। वहां हदें भी लगी, वहां दिलों का तज़किया भी हुआ। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद सहाबे कराम में जो कि इजाफा हो चुका था और उनके इंट्रैक्शंस दूसरे मुल्कों से हो चुके थे। जब इस्लाम थोड़ा फैला तो सूरत नसर में हम पढ़ेंगे कि वैजा जा नसरुल्लाह वल फत व रायतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाह अफवाजा। पहले तो सिर्फ अरब के लोग आते थे मुसलमान होने के लिए, अजम से आने लगे, इधर से उधर से वो आते, दीन सीखते, उनको अच्छा लगता। रियली मैं आपको सच बताऊं, दीन इस्लाम इतना लॉजिकल, इतना सिंपल है, जैसे बच्चा माँ का दूध हजम कर लेता है ना, तो इसी तरह हर इंसान की बात करूंगी, हर इंसान इस दीन को एक्सेप्ट कर सकता है। ये जो आज मुश्किलात है ना, ये हमारे अपने मुसलमानों की क्रिएटेड है, क्योंकि हमने दीन की तरतीब खराब कर दी, हमने नमाज के तरीकों में इख्तलाफ कर लिया, हमने आपस में झगड़े कर दिए, फिरकों में बस के। आज अगर हम सब मुसलमान रियल एंड ट्रू मुस्लिम बन जाए, जैसे इब्राहिम थे कि इस काल अलहु रब्बु अस्लिम काल असलम तो रब्बिल आलमीन, अगर हम आसमान की तरह मती बन जाए, जमीन की तरह, सूरज चांद जैसे अल्लाह के मान रहे, मैं और आप अगर एक साल लगा ले, अपने आप को इतना वक्त दे दीजिए, अगर हम सब मुसलमान हो जाएं कि ठीक है इस एक साल में हमने उम्मत मुस्लिमा की तरबियत करनी है और हमने उनको दीन देना है, तो आप देखिएगा कि उसके बाद जंगल में जैसे आग फैलती है ना, इस तरह से इस्लाम फैलेगा। आज इस्लाम के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट आज का मुसलमान है। ये बात मैंने जोश से नहीं कही, ये बात मैंने जज्बात में नहीं की, ये बात दर्द के साथ और रियलिस्टिकली कही है। आज मुझे इस बात का यकीन हो जाएगा कि मैं सच पे हूं, मेरे पास हक है, अल्लाह ने मुझे इतना खूबसूरत दीन दिया है। आप देखेंगे कोई दुनिया की ताकत नहीं लोगों को रोके, फितरत की पुकार है, दीन इस्लाम के फितरत की पुकार। इस पे एक तावा सीडी भी आप अगर सुनना चाहें तो जरूर सुन के देखिएगा कि जिसका टॉपिक ये कि इस्लाम क्या है, दीन फितरत, फितरत की पुकार है, वो कैसे होगा कि जैसे भूख लगती है तो खाने को दिल करता है, नींद आती है तो इंसान बिस्तर ढूंढता है ना, इसी तरह हर इंसान फितरतन इस्लाम को ढूंढ रहा है। वो किसी के आगे झुकना चाहता है, किसी का बनना चाहता है। जब लोग ये नहीं कर पाते तो परेशान होते हैं। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में इस्लाम कैसे आएगा, ये हमारे उस दुनिया में से निकल कर बाहर जाने से आया। ईरान, इराक और इस तरह के मुल्क आपका खैर तलवारों से फतह हुए, बहुत कम मुल्क जहां मुसलमान गए वहां रहे, इस्लाम जाहिर किया और इसी तरह से इस्लाम के साथ जब लोगों ने अपने आप को जोड़ा वो मुसलमान हो गए। अभी मैं आज किसी के बारे में सुन रही थी, एक कोई क्रिकेटर थे या गालिबन को फुटबॉल प्लेयर है, नाम मुझे याद नहीं है, सिर्फ बात सच है, अगर चाहेंगे तो रेफरेंस दे दूंगी बाद में। तो उसमें बताया जा रहा था कि वो किसी टीम का हिस्सा थे और नॉन मुस्लिम के साथ ऑफकोर्स मुकाबला था, तो नॉन मुस्लिम टीम का एक शख्स मुसलमान हो गया और उसके कमेंट्स क्या थे कि ही नेवर ट्राई टू गिव मी दावा, उसने मुझे कोई दावा नहीं दी, ही नेवर फोर्स मी टू बी मुस्लिम, तो मैं क्यों मुस्लिम हुआ, मैं अपने दीन पर इसकी कमिटमेंट की वजह से मुस्लिम हुआ। पहली बात है कि वो जब नमाज का वक्त आता है वो एक साइड पे जाके नमाज पढ़ता है, फिर जब लोगों ने उसको एक खास ब्रांड की सबको दी शर्ट्स के जो शायद शराब बेचने वाली कंपनी की थी या किसी की, उसने कहा आई कैन डू दिस, तो उसकी दीन से इस कमिटमेंट ने मुझे इस्लाम कबूल करने पर मौका दिया। ये मेरे और आपके पास है, जहां रहे मुसलमान बन के रहे, ये जमीन अल्लाह की है, आप अल्लाह की दीन पर अल्लाह के नुमाइंदे बनकर रहिए, आपको कोई नुकसान नहीं देगा। नुकसान कब है? आप हेल्दी हैं, आपके अंदर ईमान है, बचपन से लेके 18 ईयर्स तक आप अपने बेटों बेटियों की आंखें हया से भर चुके, उनके दिल में ईमान और तकवा आ चुका, उनको अच्छा मुसलमान होना आ गया, दे आर प्राउड टू बी मुस्लिम, इस दुनिया के तकाजों को भी पूरा करें दीन के, फिर मैं तो कहती हूं उनको भेजें दुनिया की हर फॉर्म में, उनको बिल्कुल आप बाहर ना ले जाएं। क्या हम इस्लाम को एक नटशेल में बंद करेंगे? क्या सारे मुस्लिम मक्का मदीना अगर जाना भी चाहेंगे तो किधर जाएंगे? ये भी एक अलग क्वेश्चन है, इस पे बड़ी डिटेल से हम बात करते हैं अपनी तफसीर की क्लासेस में। अच्छा आप सब जानना चाहते हैं कहाँ जाएंगे? आप कहते हैं ऑफकोर्स हम सऊदी अरब जाएंगे, तो क्या सऊदी अरब वाले आपको मुझे सबको वीजा दे देंगे? आने का तो दे देंगे लेकिन रहने का कौन देगा, और सारे वहां समा भी नहीं सकते। और आप कहते हैं हम पाकिस्तान चलते हैं, और हम चलिए जी हम इंडोनेशिया चलते हैं, मलेशिया, तो दुख के साथ कहूंगी, सिर्फ तकलीफ के साथ, आज दुनिया में जो हमें 100+ मुसलमान मुल्क दिखते हैं ना, इन फैक्ट दे आर नॉट इस्लामिक कंट्रीज, ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते हैं दे आर इस्लाम फ्रेंडली कंट्रीज। वहां अजान हो इट्स ओके, वहां नमाजें हो इट्स ओके, वहां मुस्लिम अटायर में इट्स ओके, अच्छा लगता है, लेकिन इस्लामिक अली वहां लॉज तो आज भी वही है जो आज से 60-70 साल पहले के थे, तो जाना बेहतर है उन लोगों के लिए जिनको लगता है वी आर सिख। हेल्दी लोग इधर रहे, जिनको दीन अच्छा लगता है, जिनको अपने दीन पे फखर अच्छा लगता है। जितना लोग अपने आप को अनकवर करते हैं वो उतना कवर करते हैं। वो कहते हैं तुम्हें इसमें शर्म नहीं आती, हमें इसमें शर्म नहीं आती। वो कहते हैं इट्स माई स्टाइल, वो कहते हैं इट्स माई स्टाइल, माई स्टाइल इज अल्लाह। जाइए दाई बन के फिरिए, आप मुसलमान बन के फिरिए, लोगों के लिए अब चलती फिरती किताबें बन के इन मुल्कों में फिरेंगे इंशाल्लाह। लेकिन हम में से हर वो घर घराना नंबर एक जिन्होंने कमी का शिकार हुए, अपने बच्चों को नहीं दिया, खुद नहीं लिया, अब मुआशरे का असर बहुत है, तो उनको तो वाकई जाना चाहिए। फिर वो किसी ऐसे मुस्लिम माहौल में जाएं कि जहां से उनके ईमान और अकीदे को फोर्स मिले, और वहां फिर स्ट्रांग होके फिर वापिस आ जाइए। तो होपफुली बात समझ आ गई है। लेकिन हिजरत बड़ी मुश्किल लगती है, क्योंकि इंसान की सोशल टाइज भी होती है, इंसान को अपनी जगह अपने घर प्यारे लगते हैं। कोई हमें कहे हाँ चलें हिजरत करते हैं, लोग हिजरत करके अपने मुल्कों से इधर तो आ जाते हैं, अपना स्टाइल अच्छा होगा, मतलब दुनिया का स्केल अच्छा होगा, लेकिन अल्लाह के दीन के स्टाइल को चेंज करने के लिए जाना, इसके रास्ते में बहुत रुकावटें हैं। आपने शायद सुना होगा 19वीं सेंचुरी के बिल्कुल आगाज में एक ज्यू थे जो मुस्लिम हुए थे, मोहम्मद असद उनका नाम था, आप गूगल पे सर्च करें उनकी तफसीर भी है। अच्छे मुस्लिम थे, क्योंकि ज्यूज में से बहुत कम लोग मुस्लिम हुए। आप कभी उनकी बातें पढ़े इन आयतों पर, वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि हिजरत और तन्हाई साथ साथ है। कहते हैं कि ये हिजरत का सफर, लोनली नाइट्स, इंसान अपने गिरोह से अलग, घर अपने छोड़ चुका, खानदान उनका दुश्मन हो गया, आगे से मुसलमान कौन सा उनको कोई वेलकम करते हैं? बस मस्जिद में तकबीर, अल्लाह अकबर, अशहद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, फिर गले मिलेंगे, प्यार करेंगे, कोई गिफ्ट दे देंगे, उसके बाद हम सब अपने जा रहे हैं घरों में, क्योंकि हमें जल्दी है, और वो बेचारा खड़ा है या बेचारी खड़ी है, भाव वेयर शुड आई गो, फिर आगे रास्ते बंद। जितनी सिस्टर्स और ब्रदर्स दुनिया में इस्लाम पे आ रहे, अब उनका हक बनता है कि आगे उनको इल्म दिया जाए। हम बोन मुस्लिम जिसको अपने आप को कहते हैं, हम आज तक दीन नहीं सीख सके, फिर भी हमारे दीन को सुनने समझने के बावजूद बेअमली की कितनी मिसालें हैं। तो जो बेचारे आज नए आए उनके लिए कितनी जरूरत होगी। तो अल्लाह से दुआ करें कि वी आर बोन मुस्लिम, वी शुड बी बोन अगेन मुस्लिम। इस वक्त हमें शौरी मुसलमान होने की जरूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इन रास्तों को आसान करे। और आइए हम सब दुआ करते हैं वेस्ट में रहने वाले मुस्लिम्स के बच्चों के दीन, ईमान, उनकी नजरों, उनकी इज्जतों, जान माल की अल्लाह हिफाजत करे। ए अल्लाह, हम तेरे दीन के काम करते हैं, तू हमारे बच्चों के काम कर। ए अल्लाह, हम तेरे दीन को फैलाते हैं, तू हमारे रिसोर्सेज को बढ़ा। हम सब इधर रहेंगे तो दीन का काम होगा। शर्त देके कि काम करें, शर्त दे के बी गुड एग्जाम्पल्स। और अगर हमने वी आर सॉरी टू बी मुस्लिम बन के उन्हीं के काम करने, तो फिर आप देख लीजिए कि वो खुश होंगे। जितने हम बामल होते जाएंगे उतना जल्दी से इस्लाम भी आएगा और उतनी हमारी इज्जत भी होगी। याद रखिए हमेशा इंसान की इज्जत उसके अपने काम में है। कहते हैं ना जिसका काम उसी को साजे, गैर का काम है गैर करे, गैर मुस्लिम है उनका अपना स्टाइल है, करने दीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मुस्लिम को मुस्लिम बनना है, और अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए।